चांदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वाली गाना बोला प्यार आपका मदनी चैनल।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو شخص صبح و شام مجھ پر 10-10 بار درود پاک پڑھے گا برود قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق آپ کو ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں اور جھلکیوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج الحمدللہ ہم نے سلسلے میں آپ کی کون کون سی فرمائشیں تیار کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
رام جانور اگر کسی بھی طرح انسان کے نفع میں آتے ہیں،
ان میں غیب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بڑی واضح ہیں، اقبال سے میسج ہے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اپنے صلوات و سلام کے اندر چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل یہ جو آپ کو دکھایا اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے۔ سید صاحب سے اشعار بھی جو ہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں آپ لوگ جو پوچھتے ہیں وہ بھی ہم براہ راست الحمدللہ پوچھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے جو ایس ایم ایس جو مدنی چینل کا آفیشیل ایس ایم ایس نمبر ہے اس پر بھی آپ نے میسج کیے ہوئے تھے پچھلی دفعہ تو وہ بھی الحمدللہ پڑھے جائیں گے، اور ساتھ میں اس میں بھی سید صاحب سے اشعار پوچھے گئے ہیں وہ بھی جو ہیں پوچھیں گے، اور اسکرین پر تو ہم تیار کر کے لے کر آتے ہی ہیں، اور انشاءاللہ اگر بالفرض، ویسے تو دو کا ہمارا فگر ہے کہ ہم دکھاتے ہیں، اور اگر بالفرض ڈیلے ہو جائے یا کبھی بھولنے کی طرف ہم جا رہے ہوں اور سید صاحب ہمیں دیگر چیزوں میں لگا رہے ہوں تو ناظرین سے پچھلی دفعہ بھی میں نے مدد کا کہا تھا کہ آپ یاد دلا دیجیے گا کہ دوسرا جو ہے وہ اپنا پہلا ہو گیا اور دوسرا باقی ہے۔
چلے ناظرین کو آسان نیکی تو بتا دیں۔
ہاں یہ اس وقت الحمدللہ عزوجل چونکہ یہ سلسلہ یہ کیا اس کے علاوہ آپ مدنی چینل کے جتنے بھی سلسلے جو ہے وہ اپنا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پر، تو آپ اس وقت جو ہے اپنا شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کی آئی ڈی پر اللہ نے چاہا تو جتنے لوگ ہیں آپ کے تو ان کو یہ نوٹیفیکیشن چلا جائے گا, تو مے بی پاسبل کتنے لوگ جو ہے الحمدللہ آپ کے اس شیئر کرنے سے جو ہے وہ یہ سلسلہ یہ پروگرام جو ہے وہ اپنا دیکھیں, اور اس کے بعد بھی الحمدللہ چونکہ آپ کی آئی ڈی کے اس پر رہے گا تو بعد میں بھی جو ہے الحمدللہ عزوجل لوگ دیکھیں گے, تو اس میں الحمدللہ مفتیان اکرام کے جو کلپس ہیں, اسی طرح نگران شورا کے نیکی کی دعوت کا سلسلہ اس میں ہوتا ہے, پھر کلام چلائے جاتے ہیں اور بھی بہت کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے, تو اس نیت سے آپ جو ہے وہ شیئر کر دیں. اللہ نے چاہا میں بھی انشاءاللہ عزوجل شیئر کرنے کی جو ہے وہ اپنا نیت کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ سید صاحب آپ کی طرف ایک میسج تو یہ ہے کہ سید صاحب سے ایسا شعر پوچھیں جس میں لفظ شب تین بار جو ہے وہ آتا ہو.
شب,
ہاں شب, شب تین بار آتا ہو. اور ایک میسج جو ہے یہ آیا تھا کہ ریپیٹ میں مدنی مذاکرے کا ٹائم ظہر کی جماعت سے پہلے کر دیں, لیکن یہ آپ کا اوپینین ہے, اگر میں اس پر ووٹنگ جو ہے وہ کرواؤں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ میں ووٹ دیں گے. اصل میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے صبح کھلے آنکھ, ویسے 8 بجے ہوتا ہے لیکن اتوار کو 9 بجے ہوتا ہے, وہ ختم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گھر اور معاشرہ پروگرام جو ہے وہ ہوتا ہے, تو اب وہ جیسے ہی پھر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد مدنی مذاکرہ. اب مدنی مذاکرہ بعضوں کا 3 گھنٹے کا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے پاس اس کی ڈوریشن ہی جو ہے وہ اپنا اس ٹائمنگ میں 2 گھنٹے کی ہوتی ہے, تو اس کو بھی شارٹ بعضوں کا کر دیا جو ہے وہ جاتا ہے, بعض چیزیں جو ہے وہ اپنا اس طرح کی. تو اب ظہر سے پہلے وہ ختم ہو. اچھا, اب کس کی ظہر مراد ہے آپ کی, یعنی آپ کس شہر سے جو ہے وہ یہ میسج کر رہے ہیں؟ کراچی میں دیکھ لیں, پنجاب میں بعضوں کا, اچھا پھر کراچی میں بھی ٹائمنگ مختلف ہے, کہاں 1 بجے بعضوں کا جماعت ہوتی ہے, بعض 1:15 ہوتی ہے, 1:30 ہوتی ہے. عالمی مدنی مرکز کا فیضان مدینہ میں تو الحمدللہ 1:30 بجے جو ہے وہ ظہر کی جماعت ہے. چلے جی, اب ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ پر ہی رہتے ہوئے ہمارے طریقہ کار میں یہ ہے کہ ہم آپ کو بچوں کے حوالے سے 2D 3D اینیمیشن وغیرہ جو ہو وہ الحمدللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. تو آج یوں دیکھیں کہ غلام رسول بھائی جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو کیا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے, کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے, آئیے دیکھتے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام,
رضوان صاحب بات کر رہے ہیں؟
نہیں, میں رضوان صاحب کا بیٹا نعمان بات کر رہا ہوں.
رضوان صاحب کا دوست بات کر رہا ہوں بینک سے, انہوں نے چیک جمع کروانا تھا.
پتہ نہیں, مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا. ابھی ابو واش روم گئے ہیں, وہاں سے آ کر بس وہ کھانا کھائیں گے, پھر انہوں نے پرومس کیا ہے وہ ہمیں گھمانے بھی لے کر جائیں گے. میرا تو پیزا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے, میں تو وہی کھاؤں گا.
اچھا اچھا, رکے دو, انہیں بتا دیجیے گا کہ فون آیا تھا.
جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمان بھائی, آپ نے بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا. کتنی بار غلام رسول بھائی نے بتایا ہے دروازہ پوچھ کر کھولنا چاہیے. او ہاں جی, میں نے خیال ہی نہیں کیا. اچھا آئے میرے ساتھ, یہ بتائیں امجد بھائی کا گھر کہاں ہے؟ امجد بھائی کا گھر وہ تو شاید ابو کے جو بینک والے دوست ہیں صابر انکل, ان کے گھر کے آس پاس ہے.
صابر انکل وہی جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں؟
جی.
انہوں نے تو بقرعید پر سب سے بڑی گائے کی قربانی کی تھی.
جی, وہ مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ ان کا ابھی فون آیا تھا.
اچھا, کیا کہا؟
اصل میں ابو نے چیک جمع کروانا ہوگا بینک میں, تو اس کے لیے انہوں نے کال کی تھی. تو وہ کال آپ نے اٹھا لی؟ جی, ابو واش روم میں تھے تو میں نے سوچا چلے گپ شپ کر لیتے ہیں.
اچھا
جی, میں نے تو انہیں سب کچھ بتا دیا, رات کا پلان بھی بتا دیا.
کون سا پلان؟
وہی کہ رات کو ہم گھومنے جائیں گے اور کھانا پینا بھی کریں گے. میں تو پیزا کھاؤں گا, میں نے یہ بھی بتا دیا.
یہ کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ امجد بھائی کے گھر کا پوچھا تھا آپ سے, مجھے کاپی چاہیے تھی ہوم ورک کرنے کے لیے.
وہ ایگزیکٹ تو غلام رسول بھائی کو پتا ہوگا,
تو سیدھا بولے نا کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بیٹا, یہ صابر بھائی کا گھر ہے؟
نہیں,
وہی صابر بھائی جو نعمان بھائی کے ابو کے دوست ہیں بینک والے.
نہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے صابر صاحب کے گھر کا؟
ہمیں نہیں پتا,
आप मेरे अबू से मिलने, सब मेरे अबू को जानते हैं, उन्हें पता होगा।
बहुत शुक्रिया।
ये क्या तरीका है, आप लोगों को कितनी बार समझाया है, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया हमने, आप लोग ये किन बातों में लग गए। मुझे देर हो रही है, होमवर्क भी करना है। एक मिनट रुकिएगा फैजान भाई। नौमान भाई, आप ये गैर जरूरी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे थे? कोई भी कुछ पूछता है तो टू दी पॉइंट जवाब देना चाहिए। ये क्या कि सब कुछ बता दो। उन्होंने पूछा था वो सब कुछ जो आपने बताया। इन्होंने तो आज अपने घर की सारी इन्फॉर्मेशन एक फोन कॉल पर दे दी। वो अब्बू के दोस्त ही थे, तो अब्बू के दोस्त की कॉल आपने क्यों उठाई? ये बहुत बुरी बात है। और जिस तरह आप फजूल बातें करते हैं या किसी को भी अपने घर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है कि सामने वाला बाद में आपके बाबा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। और फजूल चीजों से तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने भी बचने का हुक्म दिया है। प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स के इस्लाम की खूबी ये है कि बेकार बातें छोड़ दे। अल्लामा अली अल कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस्लाम की खूबी से मुराद कमाल इस्लाम है, और बेकार बात से मुराद वो बात है जिसकी तरफ किसी दीनी या दुनियावी जरूरत में हाजत ना हो। जी सॉरी, मैंने बहुत गलत किया और मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं जो आपने बताया। अच्छा गुलाम रसूल भाई, आपको अमजद भाई का घर मालूम है? आए मैं आपको दिखाता हूँ।
अब बस अमजद भाई याद हैं, जिनके चक्कर में हम सुबह से घूम रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अमजद भाई, आपकी मैथ की कॉपी चाहिए थी।
वो तो अभी कुछ देर पहले उसैद भाई लेकर गए हैं। लो भाई, फैजान भाई का होमवर्क तो फिर से रह गया।
या अल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सैयद साहब, एक मैसेज आया है कि सैयद साहब से पूछेंगे जहनी आजमाइश के रजिस्टर के बारे में बता दे कि कब भेजने हैं।
जहनी आजमाइश
में ही बताएंगे, लेकिन उनको ये पूछ रहे हैं, ये तो बता दें कि कब।
इंशाल्लाह इतवार को जो होगा उसमें ऐलान कर देंगे इंशाल्लाह।
यानी कल इंशाल्लाह इसकी जो है वो अपना तफसील सैयद साहब जो है वो बताएंगे। इसी तरीके से कॉल सेंटर का जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कुछ मैसेजेस आए हैं, उसमें से एक जो है वो अपना ये मैं पढ़ता हूँ कि मुझे आपसे ये फरमाइश करनी है कि ये कलाम चला दें, मदीने मुझको बुला लो, बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलसिले के अंदर वैसे शामिल भी है। इसी तरीके से एक मैसेज आया है कि जहनी आजमाइश के आखिर में ये सही सब आदरत तवज्जो फरमाइएगा, नाजरीन से सवाल किया जाता है, इसके जवाब देने का वक्त कितना होता है? हम सवाल का जवाब भी दुरुस्त देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम कुरानदाजी में नहीं लिखा हुआ होता। इस सवाल के जवाब का दुरुस्त वक्त हमको बताया जाए।
दुरुस्त वक्त तो यही कि जैसे शुरू में सवाल किया,
ठीक है,
तो फौरन जवाब दे देना है, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे सेगमेंट वगैरह भी चल रहे होते हैं, और आखिर में जो करते हैं उसका दूसरे दिन जवाब देना होता है।
ठीक है, असल में होता ये है कि
अब नाम क्यों नहीं निकला, ये एक वो
अंदाजी में
कुरानदाजी में नाम क्यों नहीं आता हमारा,
12 नाम या आप लोग लेते हैं। असल में होता ये है कि आप जब सवाल सुनते होंगे तो उसके बाद आप टाइप करना शुरू कर देते होंगे। लोग तो ऐसे मतलब बिल्कुल तैयार बैठे हुए होते हैं, हर चीज तैयार करके सिर्फ वो जवाब का जो है वो लफ्ज सिर्फ उसके अंदर लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। तो ये भी होता है बाजों का, जैसे ही सवाल होता है तो मतलब सैकड़ों मैसेजेस आ जाते होंगे जवाब के, तो उसमें जो पहले 12 होते हैं उनको ले लिया जाता है, वही किस्मत का मामला है।
देखिए मैं ये पर्ची, ये जो स्लाइड चली ना आपकी नामों की,
जी जी,
SMS का दुरुस्त जवाब देने, मैंने देखा मेरे घर का भी नाम इसमें आया।
अरे वाह माशाल्लाह।
अब इतने सारे नामों के अंदर से मसला है कि नसीब ऐसा हो कि कुरानदाजी में भी नाम निकले।
ठीक है,
आपका नाम 12 में हमने अनाउंस कर दिया, और अगर आपका नाम उसमें भी ना आया तो फिर आप ये शिकायत करो कि 12 नाम आ जाते हैं, फिर हमारा नाम ही नहीं आता।
में नहीं आता।
तो ये कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ने तसल्ली दे दी है, रजा हर काम का एक वक्त है,
आपने
भी आराम हो ही जाएगा।
जो गुज़िश्ता सिलसिले में नहीं हमने तस्किरा किया था, जिन्होंने कहा था वो तबर्रुकात में वो भेजिएगा, तो वो उसमें उनका मैसेज यही था कि नहीं निकल रहा हमारा, तो आपने इसी तरह का जो है वो कहा था। और तो अभी पता चला है कि ये तो जो चला निकला इसी हफ्ते में, यानी उनका दूसरा भी जो है वो अपना निकला है।
वाह वाह।
हालांकि 6 सालों तक जो है वो हमने इंतजार किया है।
لیکن اس طریقے سے بھی ہوتا ہے نا.
ہاں تو بارہ
جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے اندر آٹھواں نکلا ہے
ایک گھر کے اندر سے,
ایک ہی اسلامی بھائی کا آٹھواں نکلا
اس دفعہ.
جی ابھی بھی
اللہ ہوا.
اب ان کو ہم نے چھ تبرکات ایک ساتھ روانہ کر دیے, پھر دو ایک آئی ڈی میں ان کا نام آیا, پھر دو دن بعد پھر آئی ڈی میں ان کا نام آیا.
تو
میں نے تو پوچھا انہوں نے کرتے کیا ہے, تو کہہ رہے مجھے تبرکات کا اتنا جستجو ہے کہ میں اپنے آگے پانچ موبائل رکھ کے بیٹھا ہوتا ہوں.
کیا بات ہے. اچھا لیکن ان کو اگر تبرکات تو حاصل کر لیے انہوں نے, اب جو چیز آ گئی ہے تو اپنے جاننے والے یا ایسے لوگ جو خاندان میں بھی ہوتے ہیں کہ یار وہ بھی جواب دیتے ہیں ان کا نہیں آتا, تو کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا
یہ تو
جا سکتا ہے
مطلب یہ کہ دل جوئی کی نیت سے.
کیا بات ہے ماشاء اللہ. سید صاحب آپ کی طرف کچھ اشعار ہیں, ایک تو یہ ہے کہ سنگ, ایسا شعر سنانا ہے جس میں سنگ لفظ سنگ آتا ہو, اور
مخصوص تو نہیں ہو گئی.
ہاں وہ ہے ان کا مخصوص لیکن وہ مشہور ہی ہے. اچھا پھر دوسرا ایک آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ تم جو ہے یہ چار بار آتا ہو. ٹھیک ہے آپ جب تک جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کریں, ہم آپ کو جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہیں. تو ایک مناجات ہے عادل بھائی نے جو ہے وہ پڑھی تھی, اور وہ آج انشاءاللہ ہم سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بناتے ہیں
انشاءاللہ.
اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر کلام اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ سلسلے میں چلائی جائیں گی. آئیے مناجات سنتے ہیں.
مشکل کشا کا ساتھ ہو,
جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو.
اللہ کا میرے اللہ, اللہ کا میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ.
ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسج آیا ہے, یہ بتا دیں کہ کیا پہلے بارہ نام جو ذہنی آزمائش میں قرآن دازی میں پکارے جاتے ہیں پھر ان میں سے ایک نام اور آخر والے سوال کا جواب اسی ٹائم کیا نہیں دینا ہوتا, اور دوسرے دن کیا ذہنی آزمائش سے کچھ دیر پہلے دینا ہوتا ہے؟
اصل یہ کہ جیسے سوال اناؤنس ہوا نا اگر آپ فوراً جواب دے دیں تو وہ زیادہ ویل اینڈ گڈ ہے.
ٹھیک ہے
کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے کال سینٹر والے زیادہ نام نکال لیتے ہیں, ان میں سے پھر قرآن دازی کر کے بارہ نام نکالتے ہیں, وہ بارہ نام ہمیں تحریر کر کے دے دیتے ہیں.
یعنی آپ یہ سمجھے کہ سلسلے کے ابتدا میں بھی جب سوال ہو اور اختتام پر بھی آپ ویٹ نہ کریں, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو میسج آ رہا ہے کہ ہم فوراً جواب دیتے ہیں اس کے باوجود بھی نہیں آ رہا, تو آپ کل تک انتظار کریں گے. یہ تو ایک ویسے ٹائم لمٹ جو ہے وہ دیا ہوا ہوتا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے جواب دینا ہوتا ہے وہ فوراً ہی جو ہے وہ الحمدللہ جواب دے دیتے ہیں, اور پھر اسی ناموں کو جو ہے وہ اپنا सेलेक्ट कर लिया जाता है। सही साहब आप कुछ
फेसबुक पर है फरमाइशी आ रही हैं और वो ये कि कलाम सुना दें आई फिर याद मदीने की रुलाने के लिए।
अल्लाह अकबर।
और ये हसन अत्तारी की आवाज में है, इन्होंने एपिसोड नंबर वगैरह नहीं लिखा, कलाम कहाँ है ये भी नहीं लिखा। 313 मतवा दुर्द पाक की नियत पेश की है,
ठीक है।
और अब्दुल्ला अत्तारी है, मुझे कलाम दर पर बुला दो मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले।
अच्छा।
इस हफ्ते का सुना दें और इस हफ्ते का रिसाला और महानामा फैजान मदीना बुकिंग करने की नियत करता हूँ।
माशाल्लाह
ये दो मैसेज आए हैं।
चले माशाल्लाह जो है वो सही साहब एक मैसेज जो है वो आया था, क्या इस मरतब अब्दुल हबीब भाई का न्यू कलाम रिकॉर्ड हुआ है, ये सही साहब से पूछने का कहा गया था। अगर हुआ, अगर होगा तो कौन सा होगा, हुआ है तो कौन सा हुआ है, कब आएगा, क्या है ये जरा।
इतनी जल्दी भी क्या, आज की रात है।
अच्छा ये
कलाम तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल हबीब का रिकॉर्ड हो गया और एडिट पे लगा हुआ है, कौन सा कलाम होगा तो ये तो सस्पेंस है ना।
चलो ये है, लेकिन मतलब आप हमारे साथ हमारे सिलसिले में हो तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आप अभी रजिस्टर का पूछा तो आप बोल रहे हो कि ज़हनी आजमाइश में बताएंगे, कलाम का पूछा तो ज़हनी।
मैं यूं इसलिए बता रहा हूँ कि बात रिपीट ना करनी पड़े ना।
अच्छा
अब ज़हनी आजमाइश में बताएंगे तो मतलब सारे जो ज़हनी आजमाइश लिखने वाले उस वक्त सारे हमतन गोश होते हैं,
ठीक है। लेकिन कुछ हिंट विंट दे दिया करें ताकि हमारे साथ बैठने का हमारे
इतवार के दिन इंशाल्लाह
सही है। ये अच्छा किया माशाल्लाह आपने, और ये भी बता दिया यानी आधा जवाब बता दिया कि अब्दुल हबीब भाई का कलाम रिकॉर्ड हुआ है, कौन सा हुआ है वो इंशाल्लाह सरप्राइज है, वो आपको जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा एक मैसेज आया था, रूहानी इलाज इस्तिखारा हमारा प्रोग्राम है उसके प्रोमो के हवाले से। अच्छा है क्या, जरा मैं वो पढ़ देता हूँ। रात के वक्त रूहानी इलाज इस्तिखारा प्रोग्राम का प्रोमो ना दिखाया करें, रात का वक्त होता है, मदनी चैनल देख रहे होते हैं, एकदम आता है तो डर जाते हैं, खौफनाक है और आवाज भी अजीब सी आ रही होती है। कि हो सकता है बच्चे होंगे या 17-18 साल के भी, तो बाज़ औक़ात होता है कि गांव देहात में भी बंदे इस तरह देखा जा रहा होता है। अब वो हम अपने तौर पर सोच रहे होते हैं, हम बोलते हैं यार इसमें क्या है ऐसा, लेकिन वाकई बाज़ औक़ात
मैं आपको बताऊँ इसमें ऐसा हुआ है कि मुल्तान शरीफ के इज्तिमा में जाते थे,
ठीक है।
तो दिन में इज्तिमा गाह के अंदर है ना बड़े बड़ा बहुत बड़ा दरख्त भी लगा हुआ था ना,
ठीक है।
तो दिन में तो उस दरख्त के आगे से कई दफा गुजरना हुआ
है,
अब रात में कभी उस दरख्त के आगे से गुजरना तो ऐसा अजीब सा महसूस होता है, खौफ से होता है महसूस
है।
और ये इंसान की तबीयत है ना,
ऐसा
महसूस होता है कि यार ये पता नहीं इतना बड़ा दरख्त है, ये इस पर कितने जिन्नात के बसेरे होंगे, इस तरह होता है ये। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो कुछ हुआ होगा, तभी उन्होंने कुछ कहा है ना।
बहरहाल उनको डर जो है वो लगता है। बहरहाल हम इतना जरूर कर सकते हैं कि अपनी मजलिस से ये अर्ज कर दें, अब कबूल करना ना करना ये उनकी सवाब दीद पर है।
नहीं तो अब आप ये भी तो बताएंगे अगर जहाँ पर अभी यहाँ पर आप रात में नहीं चला रहे हो तो बाद जगह पर जहाँ दिन हो रहा है तो वो उनके लिए क्या करेंगे फिर।
उन्होंने कहा ही नहीं है ये, मुझे तो लगता है कि ये शायद पंजाब वगैरह से या इस तरह से आया, बैरून मुल्क वालों की तरफ से नहीं है, तो पाकिस्तान में एक ही वक्त में जो है वो रात हो रही है। चले जी आपको सिलसिले के अंदर हम आपको ज़हनी आजमाइश का तस्करा चल रहा है तो क्यों ना आपको ज़हनी आजमाइश के अंदर एक मैसेज हमें आता है, इश्क के बोल सेगमेंट वो आप अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाए, उन्होंने बाकायदा बताया था एपिसोड नंबर अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके लिए तैयार किया, आइए देखते हैं।
नूह हो खलील हो मूसा हो ईसा, नूह हो खलील हो मूसा हो ईसा, सबका है आका नामे मोहम्मद, सबका है आका नामे मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सारे चमन में लाखों गुलों में, सारे चमन में लाखों गुलों में, गुल है हजार नामे मोहम्मद, गुल है हजारा नामे मोहम्मद, जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरी सहाबे सुखन से न मीम के नम से भी कम,
बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले,
बलीग बहरे बलागत बलाग लेके चले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मदीना जाने जिना ओ जहाँ है वो सुन ले, जिन्हें जुनूनों जिना सुए जाग लेके चले, जिन्हें जुनूने जिना सुए जाग लेके चले, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब स्क्रीन पर शेर दिखाया जाएगा और आपको अगले मिसरे को दुरुस्त करना होगा या बताना होगा, दिखाइए जनाब। तेरे। अब ये दूसरे शेर का कौन सा लफ्ज आप देखना चाहेंगे? एक लफ्ज देखेंगे कोई नंबर नहीं कटेंगे, अगला लफ्ज देखेंगे तो फिर नंबर माइनस कर लिया जाएगा।
दूसरे का पहला,
पहला दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज बताइए। हैरान,
ये तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या,
हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्क्रीन पर शेर दिखाया जाए। वो सिर्फ लफ्ज वो है।
दूसरे का पहला खोल लीजिए,
दूसरे का पहला लफ्ज दिखाइए। अदना,
वो खुल्द जिससे उतरेंगी अबरार की बात, अनुशावर उस मेरे दूल्हा के सर की है।
वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बरात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सवाल है जहलम वालों से, दिखाइए स्क्रीन पर शेर। इस
है, है।
दूसरे का पहला,
दूसरी लाइन का पहला लफ्ज दिखाया जाए। ताब,
इस मुर्दा दिल को मुजदा हयाते अबद का दूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे,
ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी शेखपुरा वालों की है, बड़ा जल्दी पहुंच रहे हैं जनाब ये अशार पर, कुछ और मुश्किल करना पड़ेगा। बहरहाल दिखाइए संकी, इसका तो मेरा ख्याल है दूसरे लफ्ज की भी जरूरत नहीं,
दूसरे का। चल संकी वो देख बादे शफाअत के दे हवा, ये आबरू रजा तेरे दामानों तर की है,
क्या बात है संकी वो देख। अब देखिए इसमें जो खूबसूरत बात है ना, कि यहाँ पर आला हजरत कह रहे हैं, यानी हवा जब सनकती है ना तेज चलती है, तो हजरत कहते हैं बादे शफाअत देखो ए रजा तेजी से चल रही है, और ये बादे शफाअत जब चलेगी, हवा चलेगी ना शफाअत की, तो ए रजा आमाल बुरे होने की वजह से दामान तर हो गया है। किसी का दामन गीला हो जाए ना, तो वो हवा को ढूंढता है कि हवा मिले तो मैं अपना दामन सुखा लूं। आला हजरत ने क्या इस्तियारा इस्तेमाल किया है कि ए रजा तेरी आबरू बच जाएगी, तेरी इज्जत बच जाएगी, जो गुनाहों की वजह से दामान तर है ना, घबरा मत, शफाअत की हवा चल पड़ी है, इंशाअल्लाह शफाअत की हवा चलेगी, दामन की ये जो तरी है ये सूख जाएगी और नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिला नसीब हो जाएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत चैनल के नाज़रीन, अर्ज करूंगा कि अभी जब ये क्लिप चल रहा था तो मैं सैयद साहब की तरफ तवज्जो मैंने की, तो वो जब टीम से पूछा जा रहा था बस उनको दिखाकर, तो उन्होंने दूसरा लफ्ज खुलवाया, दूसरे शेर का लफ्ज। तो आप यहाँ बैठे हुए मतलब आप, यानी आप वो शेर पढ़ रहे थे कि आपको आ गया बड़े मतलब जौक और शौक के साथ ना, तो जबकि आप उस वक्त एक तो प्रोग्राम के अंदर भी मौजूद थे, तो वैसे भी बंदे को, और ये वाला आसान ही था, तो जो हमने तैयार किया है
मुद्दा, मुद्दे पर आया,
हाँ, तो वो कभी आपसे पूछते हैं, आसान भी होता है, कभी मुश्किल भी हो जाता है, वो भी पूछते हैं, लेकिन एक चीज ये भी आपसे जो है वो अपना पूछनी है। जेरी आजमाइश में जो ये सेगमेंट है वो जो खानदानी रिश्ते वाला, वो तो टीम से जरूर जो पूछते हैं, फिर आपने जो अब्दुल हबीब भाई से किया ना सिलसिला पूछने का, मैं आपको सही बताऊं, मैं घर पे जब ये देख रहा था सिलसिला, मैंने अपने बच्चों से जो है वो अपना बात की, मैंने कहा सैयद साहब से जो है ना ठीक है, वो आपको इख्तियार है वहां पूछने का, तो यहाँ हमारे पास भी इख्तियार था, तो मैंने नीयत तो उस वक्त की थी कि आपसे भी जो है ना वो एक आध पूछूंगा, लेकिन फिर बहरहाल जो है वो
माफ कर दिया।
हाँ, मतलब जहन जो है वो तब्दील हो गया। चलें जी, खानदानी रिश्ते का तो पूछने का तब्दील हुआ है, लेकिन जो अशआर हम आपसे पूछते हैं वीडियो स्क्रीन की सूरत में, वो हमने बहरहाल आपसे पूछने हैं, दिखाइए जी। क्या नजर आ रहा है जी?
चिड़िया, हरन, ऊंट
है थोड़ा, मुझे लगता है कि अच्छा ये ऊंट है ना, ये यूं समझे कि लव से ऊंट उसके अंदर नहीं है, इसके लिए दूसरा लव इस्तेमाल होता है।
अच्छा, ऊंट नहीं है, ये हरन है उसमें
है, ऊंट लव से ऊंट नहीं है, लेकिन ऊंट के लिए एक और लव इस्तेमाल होता है वो है उसके अंदर, और हिरनी है यानी ये, और चिड़िया जो है वो है।
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का,
अच्छा याद आ गया आपको, वैसे मुझे एक उकाड़ा से मैसेज है उसमें उन्होंने जवाब बारल दे दिया है।
हाँ, यही करती है चिड़िया फरियाद,
अल्लाह अकबर।
हाँ यही हरन, हाँ यही से चाहती है हरनी दाद, इसी दर पर शुतराने नाशाद, गिलाए रंजो इना करते हैं।
वाह क्या बात है, जरा हो जाए
दिखाए स्क्रीन पे भाई
स्क्रीन पे दिखा दे ताकि सही है साहब।
हाँ यही करती है चिड़िया परियां, हाँ यही चाहती है हरनीदार, इसी तर पर शोतरा
नाजरीन। चलते हैं आपको एक क्लिप दिखाते हैं निगरान शूरा का। आमतौर पर बच्चों की मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात होती है, बच्चे कभी ये मांगते हैं कभी वो मांगते हैं, यानी किसी एक चीज पर आमतौर पर रुकते ही नहीं है। खाने की चीज है तो उसमें उनकी अलग यूं समझे कि फरमाइशें हैं, फिर इसी तरह खेल कूद का सामान है या दीगर और चीजें हैं, तो वो किसी तरीके से यूं समझे राम होते नहीं है, मतलब आराम उनको। तो निगरान शूरा ने कैसे समझाया है कि बच्चे चीजों की ख्वाहिश करे तो क्या क्या पूरी करनी है, क्या नहीं पूरी करनी, जो नहीं पूरी करनी तो किस तरीके से मना करना है, आइए सुनते
हैं। बात ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना जी, बच्चे वो किसी बात की जिद लगा देते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, तो ऐसी सूरत में वालिदैन क्या करें?
कोशिश करें तो अपने बच्चों की जायज और दुरुस्त ख्वाहिशों को पूरा किया जा सकता है। अब हर वक्त हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए। मैंने जो पढ़ा है मुताला किया है, इससे मैंने ये अक्स किया है कि बच्चे को ना सुनने की आदत होनी चाहिए। नहीं, वरना इसके लिए बहुत आजमाइश हो जाएगी। बाज़ वक़्त बच्चों को हम लाड देकर प्यार देकर इतना मतलब कि उसको वो कर देते हैं कि बाद में ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। जमीन को पानी कम दो तब भी नुकसान है, जमीन को पानी ज्यादा दे दो तब भी नुकसान है। एक किसान को पता है कि मेरी जमीन को किस कदर पानी की जरूरत है, मगर के एक माँ बाप को नहीं पता कि हमारी औलाद को कितनी शफकत और कितनी सख्ती की जरूरत है। अगर वो चीज मुजीर सेहत है
जी,
तो उस चीज से उसको कराहियत दिलाई जाए,
सही वाह,
ताकि वो देख कर आपके पीछे भी वो काम ना करे। यानी कि ये एक वालिदैन के लिए होता है कि वो अपने खौफ और अपने डर की वजह से बच्चों को बचाने के बजाय बच्चों के दिल में उस शे की मजम्मत और उस शे का नुकसान डाल दें, ताकि आप दुनिया से चले जाएं या आप ना देख रहे हो तो आपके पीछे ही बच्चा वो काम ना करे। बच्चे को अंदाजा हो जाता है कि यार ये चीज गलत है, मुजीर सेहत है या नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह, या फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज के हिसाब से बता दिया जाए बेटा हम नहीं ले सकते हमारी पोजीशन, लेकिन एज के बाद हर बच्चा इस बात को एफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो समझ जाएगा, फिर उसके अंदर भी ये किफायत के साथ चलना और अपने अखराजात के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका पैदा हो सकता है, वो भी एक हिकमत अमली है, ये भी एक हिकमत अमली है। अब देखो फिर बाप बेहतर जानता है कि मेरा बच्चा किस हिकमत अमली के साथ हैंडल हो जाता है, तो वो अपनी उन्हीं हिकमत अमली के साथ हैंडल करे।
वैसे आपके बच्चे किस हिकमत अमली से हैंडल होते हैं?
मेरे नवासे के मेरे घर में हो, या मेरे पोते मेरे पोती पोता घर में हो, मेरे बच्चे घर में हो, मेरी बच्चियां मेरे घर में है, अगर ये मुझे कुछ कहें तो मैं अमूमन कोशिश ये करता हूँ कि उन चीजों के अगर नहीं लेना तो उसके ना लेने की वजूहात पर मैं कलाम करता हूँ, फिर उस कलाम पर या तो वो समझ जाते हैं या इज्जत और मोहब्बत में खामोश हो जाते हैं, या फिर उनके पास गुंजाइश होती है कि वो बात कर लेते हैं, या तो फिर मुझे कायल कर लेंगे।
सही।
और कायल होना यही होता है कि चलो इक्का दुक्का से नहीं फर्क पड़ता, इसी चीजें होती हैं, तो ऐसा सिचुएशन ही करना होता है। लेकिन मेरा यही जहन है कि बच्चों के दिलों में या बच्चों के जहनों में आप जो काम नहीं करना चाहते उसके नुकसानात क्यों नहीं करना चाहते, ये बच्चों के जहन में अगर बैठ जाए ना तो आपके एब्सेंट में भी बच्चा उन चीजों से बचेगा।
बहुत खूब, बहुत जबरदस्त बात।
मतलब पीछे से करेगा, यार अब्बू तो नहीं देख रहे, अम्मी तो नहीं देख रही ना, कर लो। ये है, ये अपनी अपनी सोच है,
बहुत प्यारी सोच है
माशाल्लाह। सैयद साहब एक सवाल आया है कि सैयद साहब से सवाल है कि ज़हनी आजमाइश में और दूसरे दिन ये किसके बच्चे उठा के ले आते हैं, मतलब ये बच्चे उठा कर लाना, मतलब थोड़ा अच्छा जुमला हो सकता था उठाना, एक तो हमारे यहाँ अगवा करने के माना में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जो है वो कहाँ से ले आते हैं?
मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत
है। क्या बात है, क्या बात
है, मुझसे मोहब्बत है, और जब से मैंने अमीर अहले सुन्नत ने ये हदीस रिवायत की थी कि जन्नत के अंदर के मकाम में जैसे दारुल फराह कहा जाता है, और इसमें वो लोग दाखिल होंगे जो बच्चों का दिल खुश करते हैं, चाहे वो इंसान के बच्चे हो चाहे जानवर के बच्चे हो। तो बस एक है जस्तजू की, काश हमारा दाखिला भी सरकार अलैहिस्सलाम की शफात के जरिए उस जगह पर हो जाए। तो बच्चे होते हैं हाजरीन मायब होते हैं, तो मैं बस
उठा के
उनकी भी दिल जो जाती है, खानदान वाले स्क्रीन पे देख ले तो उनकी भी दिल जो जाती है, और ये सब अमीर अहले सुन्नत का सदका अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या बात है माशाल्लाह। चले जी माशाल्लाह। दुरूद ताज सिप्तर भाई ने जो है वो एक प्रोग्राम है या नबी सलाम अलैहि का
एक मैसेज हमारे पास ये भी आया सिप्तर भाई के हवाले से कि सिप्तर भाई ने जो अरबी कलाम पढ़ा था वो सुनवा दीजिए, और 10,000 मरतबा दुरूद पाक पेश किए।
अब ये शायद वो स्टूडियो कलाम
है, अरबी कलाम को इन्होंने पढ़ा, स्टूडियो कलाम।
आज तो वैसे इनके दो ऑलरेडी शामिल है, नेक्स्ट पे जो है वो देख लेते हैं। आइए दुरूद ताज सुनते हैं
इंशाल्लाह।
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الغرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.
ما شاء الله ما شاء الله. एक मैसेज आया था सईद साहब, हमारा जो मदनी चैनल का ऑफिशियल एसएमएस नंबर है उस पर चूंकि लोग अभी मैसेज करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फाइल जो है हमें दे दी जाती है जिसमें ये आपके मैसेजेस होते हैं, तो उसमें से जो आपकी फरमाइशें होती हैं और जो प्रोग्रामिंग के हवाले से जो सजेशन होती है अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लिख कर लाते हैं और जो पढ़ने जैसी होती हैं वो आप या पढ़ भी देते हैं और जो मजलिस तक पहुंचानी होती है वो हम पहुंचा भी देते हैं. एक मैसेज था, ये इससे पहले भी आ चुका है, खलील भाई जो नुस्खे बताते हैं कुलियां सल्ले अला कहते कहते में कह रहे हैं कि उनका एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए जैसे रूहानी इलाज और इस्तिखारा और दारुल इफ्ता अहले सुन्नत. कह रहे हैं कि मजलिस को ये नाकिस मशवरा दिया जाए, इससे उम्मत को बहुत फायदा होगा. अल्हम्दुलिल्लाह हम ये दे भी चुके हैं और दोबारा भी इंशाल्लाह अर्ज करने की कोशिश करेंगे. अब आपको एक कलाम जो है वो महमूद भाई, अभी गुज़िश्ता दिनों जब अशफाक भाई ये कर रहे थे ज़ैनी आजमाइश, जब अब्दुल हबीब भाई नहीं थे तो उसमें महमूद भाई आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ज़ैनी आजमाइश के अंदर वो कलाम भी पढ़ा था, सफर हमारा भी हो माशाल्लाह. आइए सुनते हैं.
کر کے پوچھے میں ہم دل ہی دل میں ہارے دل اپنا سنا سنیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے کوچے ہم دل ہی دل میں ہارے دل اپنا سنا سنیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر کے کوچے کوچے کبھی ہم بھی حضرات کو دیکھیں کبھی خود کو نگاہ بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں
سید صاحب ایک میسج آیا ہے, میسج ہے کہ آپ سے ایک بات شیئر کریں, سید صاحب کو بھی بتائیے گا.
جی جی,
اب چونکہ بتا رہا ہوں تو ناظرین بھی جو ہے وہ اپنا سن لیں گے. یعنی یوں سمجھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہی جو تحائف وغیرہ تبرکات وغیرہ نکلتے ہیں نا ان کے حوالے سے, ذہنی آزمائش میں ایک بار ہمارا بھی تحفہ نکلا تھا غلاف کعبہ کے دھاگے وغیرہ.
جی جی,
پر جب میرے والد صاحب کا وصال ہوا تھا تو وہ ہم نے ابو کی قبر میں رکھ دیے ان کے ساتھ ایک تبرک کے طور پر. جب والد صاحب فوت ہوئے اس سے ایک رات پہلے بھی ہم نے سلسلے میں جواب دیا, صبح بابا فوت ہو گئے اس رات پر ہمارا انعام نکل آیا, ہمیں پھر مل گئے.
واہ کیا بات,
کیا بات ہے, کیا بات.
اب دیکھیں تبرکات اگر بانٹے تو بڑھتے
ہے نا,
ہے نا. یہ اور یہ آپ کو اندازہ ہوگا اس بات سے, ذہنی آزمائش ماشاء اللہ آپ نے شروع میں آپ بھی کیا, آپ نے بھی کیا.
جی جی,
تو جب سے ہم نے تبرکات کی تقسیم
الحمد للہ ماشاء اللہ شروع ہو گیا,
ہمارا سمجھ لیں کہ شعبہ مدنی چینل پر ایک بن گیا ہے, اور باقاعدہ مجھے ایک الماری ٹائپ اور الحمد للہ پورا سارا ہم اس پر ورکنگ کرتے ہیں.
کیا بات.
اور پھر تبرکات کی ایسی ریل پہلے کہ الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں اخلاص کی نعمت.
آمین آمین. چلے جی, آپ کو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں, اور یہ یاد خدا و مصطفیٰ میں ایک ہمارے ناطخواں ہیں, ان کا نام اویس, میسج میں بھی یہی آیا تھا, ہم کو بلانا
یا رسول,
یا رسول اللہ.
آمین آمین
آمین.
کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا کا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ,
سڑکوں سے جاتے ہیں
در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ
ماشاء اللہ. سید صاحب ایک میسج آیا ہے کہ سید صاحب سے پوچھے کہ جنید شیخ بھائی ابھی تک ذہنی آزمائش پہ کیوں نہیں آئے.
ارے آپ نے میسج کیا تو انشاءاللہ انوائٹ کرتے انہیں,
لیکن اب چونکہ
تین چار تین سلسلے رہ گئے کراچی میں.
اچھا کراچی میں
ابھی تین سلسلے.
اچھا یہ ایک
سوار اور بعد اور منگل.
ٹھیک ہے
تو انوائٹ کرتے ہیں.
اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ کا میسج آیا تھا کہ نگران شورا کو آپ بڑے پریشان تھے ناظرین کے جا رہے ہیں بیرون ملک جا رہے ہیں تو اب تو جب آئیں گے تو اس وقت تو الحمدللہ یہ نگران شورا کل کے ذہنی آزمائش میں الحمدللہ ان کا بیان ہے اور نگران شورا انشاءاللہ ہوں گے جو ہے وہ ذہنی آزمائش میں. تو پھر ذہنی آزمائش کے حوالے سے بھی
نگران شورا کو اور عبدالرحمٰن کو دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا بھی چاہتے ہیں لوگ.
کیا بات ہے,
ایک پروگرام کے اندر
کیا بات ہے ماشاء اللہ. چلے جی سلسلے کو مزید آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. اور ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ مفتی علی اصغر صاحب نے حرام جانور جو ہے ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا, وہ کلپ وہ دیکھنا چاہتے تھے تو ہم نے تیار کیا.
آئیے فیس بک کے ناظرین کی فرمائش تھی.
اچھا چلے ماشاء اللہ یہ دیکھیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے, حرام جانوروں کی خرید و فروخت کرنا کیسا, شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
حرام جانور اگر کسی بھی طرح انسان کے نفع میں آتے ہیں تو نفع سے مراد صرف یہ نہیں کہ ان کو کھایا جاتا ہے, نفع میں آتے ہیں کسی بھی طرح, مثال کے طور پر کتا ہے اور شکار کرنے کے لیے اس کو خریدا جاتا ہے, یا گاؤں دیہات میں کتے رکھوالی کے لیے جو رکھے جاتے ہیں, مویشیوں کے ریوڑ کے ساتھ گھروں کے باہر چوکی داری کے لیے کتے پالے جاتے ہیں, اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی اور ایسا جانور ہے کہ اس سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھایا جاتا ہے. چلو سانپ ہی ہے, اب سانپ کی جلد لے کے جو نا کوئی چیز بنائی جاتی ہو بالفرض, یا بھیڑیا ہو گیا اس کی جلد دباغت کے بعد تو پاک ہو جائے گی اگر وہ جو طریقہ حلال کرنے کا اس سے حلال نہیں ہوا, ویسے مردار تھا تو دباغت کے بعد جلد بھی پاک ہو جائے گی اس کی, اب اس جلد سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے. تو یوں کسی بھی طرح جائز نفع اس سے ممکن ہے تو ایسی چیزوں کو خریدا بیچا جا سکتا ہے. ہاتھی مثال سامنے, گدا سامنے ہمارے, گدا کا گوشت کھانا تو جائز نہیں ہے لیکن وہ انسانی نفع میں آتا ہے, انسان سے نفع اٹھاتا ہے. پرانے زمانے میں ہاتھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو ہاتھیوں کی سواریاں ہوتی تھیں, تو جائز نفع میں اگر اس کا کوئی استعمال موجود ہے اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی.
ماشاءاللہ ایک میسج آیا ہے کہ مندری چینل کی اسکرین پر جو اوپر نام یعنی فرمائشیں چل رہی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے اور جو نیچے ٹکر پر نام چل رہے ہیں وہ بھی نظر نہیں آتے, تو بہت نیچے ہیں. بہت نیچے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں نظر نہ آنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے, ایک تو یہ کہ یعنی لکھے ہوئے صحیح ہیں لیکن آپ کو جو ہے وہ چھوٹا محسوس ہو رہا ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدھا اسکرین پر جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آدھا نہیں نظر آ رہا. تو اب ہمارے سامنے جو اسکرین ہے یا عموماً گھر پر تو اس میں ہم جتنا دور بیٹھے ہوئے ہاں تو ہم ویسے جتنا دور ہم بیٹھے ہوئے تو اس میں الحمدللہ یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. تو ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جو
ٹیلی ویژن کی سیٹنگ میں بعدوں کا ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے زوم کا بٹن دبایا ہوگا تو یہ اسکرین بڑی ہو گئی ہوگی تو یہ سارا جو نام وغیرہ سارے چھپ جاتے ہیں, تو وہ اس کو زوم آؤٹ کر دیں تو انشاءاللہ
ان کے لیے آسانی ہو جائے گی,
آسانی ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ وہ نام بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے.
چلے ماشاء اللہ عزوجل نام بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اسکرین پر جب آپ کو کچھ دکھائیں گے سید صاحب سے پوچھنے کے لیے تو وہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور کیا جو ہے وہ دکھانا ہے آئیے دکھاتے ہیں. جی بتائیں سید صاحب مسکرا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو کچھ آ رہا ہے سمجھ. اچھا یہ جو ہے نا یہ ہم نے نہیں بنایا, یہ جس دور میں وہ چلتے تھے نا وردی مذاکرے یا کسی پروگرام تو اس وقت حاجی امین صاحب نے کہا تھا, تو یہ ناظرین میں سے ہی نا کسی نے ان کو یہ بھیجی تھی
पिक्चरें वगैरह कि भाई ये इसका बनाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तैयार किया था उस वक्त, तो अब आपको क्या बताएं क्या लग रहा
है? ट्रैफिक नजर आ रहा है,
ट्रैफिक नजर आ रहा है। वैसे ये ट्रैफिक मकसूद नहीं है, ये कोई एक खास क्या बोलते हैं वो,
इशारा है,
इशारा है, इशारा भी बोलते हैं, गली भी बोलते हैं उसको,
और ये ठोकर लगी है।
अल्लाह, अच्छा वो असल में आपको वो आधी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा था वो ठोकर वाला बंदा जो है ना वो, हाँ अब सही है, अब नजर आ रहा
है ना ये?
जी जी ठोकर है, और इस तरफ क्या है, यहाँ क्या आपको नजर आ रहा है?
दिल
है। दिल
ठोकर से दिल,
और दिल के साथ कुछ और भी तो है,
वो ही समझ नहीं आ रहा, दिल और दिमाग,
बस दिमाग है उसको, लेकिन उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होती है,
दिमाग लेके चले,
नहीं दिमाग नहीं है, यानी
मगज भी नहीं है,
मतलब ये दिमाग मगज ये एक ही चीज के लिए
भी कहते हैं,
लेकिन
अकल भी हो,
ये अब पहुंचे आप, अब आपको कुछ समझ में आया?
हाँ बिल्कुल समझ आ गया।
समझ आ गया तो सुना दे फिर, अगर समझ में आ गया।
फिर ये गली गली तबाह ठोकर सब दिखाए क्यों, फिर के गली गली तबाह
ये मैंने आपको जो दूसरा शेर सुना ना, तो ये आपने मुझे कहा था जिसमें संग है,
मैं समझ
तो
गया,
मैंने इसीलिए वो
यानी एक तीर से आपने दो शिकार कर दिए। आइए अब आपको एक कलाम सुनाते हैं, ये महफिल नात पे पढ़ा गया था, तकरीबन पंजाब वगैरह में हुई थी, क्या करूं के
याद आती है सुनहरी
जालिया,
को दूर कर देती है
हरी हरी जालियां प्यार से जब मौत को राती सुनहरी हरी जालियां और दिल में
माशाल्लाह। मैसेज आया कि आज स्क्रीन के ही पूछ रहे हमारा वो जो चार दफा तुम वाला है वो अभी तक नहीं पूछा
तो अभी तो अभी सुना है तो सेम मैंने इसके अंदर से
तुम वाला सुना दिया चार दफा
अभी सुना देते
नहीं वो आप भले हम कुरानदाजी में सुनाएंगे लेकिन हम आप तक पहुंचा दिया है। सैयद साहब ने तैयार भी जो है वो कर लिया है। हम आपको अब एक अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप है मुख्तसर सा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान
बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत अपने सलातो सलाम के अंदर क्या शानदार अंदाज में नबी पाक के मुबारक दहन का जिक्र करते हैं। हमारा मुंह जो है होंठ ज़बान और गले पर मबनी है गुफ्तगू और आवाज पर मबनी है। जरा तसव्वुर करो मेरे आका का दहन मुबारक कैसा था। वो लिखते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखो सलाम वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम जिसके पानी से शादाब जानो जिना उस दहन की तरावट पे लाखों सलाम जिसने खारी कुए शीरा जा बने उस सुलाले हलावत पे लाखों सलाम वो जबां जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम उसकी प्यारी फताहत पे बेहद दुरूद उसकी दिलकश बलागत पे लाखों सलाम उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम वो दुआ जिसका जो बने बहारे कबूल उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के उन सितारों की बुजहत पे लाखों सलाम जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों आए आए ऐसा मुंह मुबारक है ऐसी मुस्कुराहट है ऐसी आवाज है। आवाज पता है कैसी थी नबी पाक की मुबारक आवाज। इस वक्त बाहर लोग बैठे हैं आपको माइक लगाना पड़ा है ठीक है। अच्छा माइक में भी एक माइक होता है नॉर्मल माइक एक माइक होता है इको साउंड वाला मजा आता है सुनने में आवाज की गूंज पैदा होती है। सुनो मेरे आका की शान यह है हजारों का मजमा होता सबको इक्वली आवाज जाया करती थी।
माशाल्लाह माशाल्लाह।
मैसेज आया अकबर हुसैन भाई
जी
और नाजरीन आप देखिएगा उसका जवाब क्या होता है कि यूसुफ भाई अकबर हुसैन भाई आपसे अशार वगैरह पूछते हैं आप उनसे क्यों नहीं पूछते आप भी उनसे पूछा करें।
तनु आंदे ही कोई नहीं
देखा मत नहीं चले
ये मुराद
जवाब हाँ ये जवाब आना था
नहीं, मुराद ये है कि हम मुकाबले में है ही नहीं तो जो बंदा मुकाबले में नहीं है तो उसको क्यों घसीट कर जो है वो जबरदस्ती लेकर आना है। सैयद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये शफकत फरमाते हुए अपने आप को पेश किया हुआ है आपके आते हैं नाजरीन के मैसेजेस अल्हम्दुलिल्लाह और जवाब देते हैं तो एक जी
ये बताएं याद खुदा मुस्तफा का रिपीट टाइम क्या है कब लगता है
ये मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। इससे पहले भी यानी यूँ समझे कि पहले ये था कि ये रिपीट होता ही नहीं था लेकिन नाजरीन ने बोल बोल के अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिपीट हमने करना शुरू कर दिया था। गालिबन शायद ये इतवार ये पीर की सुबह है मैं एग्जैक्ट टाइम इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जब तक हम एक कलाम जो है वो सुनने जा रहे हैं अभी हमने सुनहरी जालियां का सुना था अब ये अच्छा वो क्या कहते हैं अशवाक भाई का वो एक कलाम पढ़ा था ज़ेनी आजमाइश में या रब सुए मदीना
मस्ताना
बन के जाऊं
उनके सिवा किसी की
دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو شان اس ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں اس شان شان ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب یا مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شب اس شو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں یا رب یا مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شب میں سو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں لب پر نبی شان شان ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں اس شان شان ادا کا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب یا مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شب میں سو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
کیا بات ہے.
اچھا ایک میسج ہمیں آیا تھا کہ ذہنی آزمائش میں جب کلام وغیرہ چل رہا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی مدینہ پاک کے مناظر بھی اس وقت دکھائے جائے, تو یہ آپ ہیں موجود تو ہم نے آپ سے عرض کر دی, تو مجلس کو جو بھی آپ کا وہ ہے ڈپارٹمنٹ ان کو عرض کر دیجیے گا. اب آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنانے جا رہے ہیں, اے خاک مدینہ
تیرا کہنا کیا,
تیرا کہنا کیا ہے. माशाअल्लाह। सैयद साहब, अभी आपने याद खुदा व मुस्तफ़ा प्रोग्राम का रिपीट टाइम जो है वो पूछा था, तो अब हमने अपनी मजलिस को भी मैसेज किया और हमारे नाजरीन ने भी जो है वो
जवाब बता दिया।
हाँ, जवाब बता दिया, लेकिन जाहिर बात है कि नाजरीन के जवाब को अथेंटिक क्यों नहीं कह सकते कि हमारी चीजें जो है ना वो चेंज होती रहती है। पता चला आपने एक हफ्ते पहले या दो हफ्ते पहले वो देखा था उस वक्त पे, तो हमारी बाज़ औक़ात ये चेंजिंग हो सकती है। तो नाजरीन में से किसी ने मैसेज किया, उसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉल सेंटर वालों ने हमें सेंड कर दिया, उसमें उन्होंने मंडे को सुबह 6 बजे बताया है। लेकिन जो हमारी मजलिस का मुझे मैसेज आया है वो है मंडे को 4:45, 4:45 जो है वो है। तो हो सकता है पहले 6 बजे होगा, लेकिन अब चूंकि टाइमिंग इसकी जो है वो रिपीट की हो गई होगी, तो अब इस वक्त चलता होगा। अभी आपको एक बस छोटा सा चंद सेकंड का एक क्लिप है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो इसका रूहानी इलाज हमसे पूछा गया था, वो हमने तैयार किया, ये देखते हैं।
वाल से मैसेज है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता, अक्सर सर में दर्द रहता है, और दूसरा ये कि इम्तिहान में कामयाबी का भी कोई वजीफा बताएं। तो पढ़ाई में दिल लगने का और इम्तिहान में कामयाबी का एक रूहानी इलाज मैं अर्ज करता हूँ, या अल्लाह या रहमान 101 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके ये बच्चे को पिलाए तो बच्चे का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। और दिन में 5 टाइम आपने इस वजीफे को पढ़ना है, पानी पे दम करके बच्चों को पिलाना है। इम्तिहान में कामयाबी का कोई वजीफा बताए तो हर नमाज के बाद सूरह इखलास 16 मरतबा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह करीम फायदा हासिल होगा, कामयाबी नसीब होगी।
माशाल्लाह, ये रहा आज के सिलसिले के जितने क्लिप्स हम चला सकते थे, हालांकि हमने तैयार तो अभी भी बहुत सारे हैं जो बाकी हैं जो आज नहीं चल पाए, इंशाल्लाह इसको अगले सिलसिलों में जो है वो शामिल करेंगे। अब हम हस्ब मामूल जो है वो
कुरानदाजी की तरफ चलते हैं,
कुरानदाजी करते हैं,
जब तक आप
कोई शेर आपकी तरफ उधार है तुम वाला
जी
चले।
तुमसे खुला बाबे जू, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे खुला बाबे जू, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे खुला बाबे जू, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबका वजूद, तुमसे है सबकी बका, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुमसे सबकी बका, तुम पे करोड़ों दुरूद।
ईना बिनते इजाज अत्तारिया ओकाड़ा, अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता फरमाए, इंशाअल्लाह उल करीम आपका तोहफा आपको रवाना किया जाएगा।
अल्लाह ने चाहा आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत, सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वाली हाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।